तो आज हम बात करेंगे गोल्डन एज में लाइफस्टाइल का क्या पैटर्न होता था जिसकी वजह से उस समय के लोग वैदिक समय में लोग हेल्दी होते थे। कल हमने बात किया था विजिबल इनपुट्स और इनविजिबल इनपुट जो हम अपने माइंड ब्रेन बॉडी और सोल को देते हैं उसका हमारे दिनचर्या पर हमारी लाइफ पर हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर होता है। इनविजिबल इनपुट्स जिसमें हमने बात किया था थॉट्स और इमोशन का, इंफॉर्मेशन का, यानी हम दिन भर कौन सी इंफॉर्मेशन इस माइंड को दे रहे हैं। विजिबल इनपुट की अगर बात करें तो तीन चीजें आती हैं, फूड, वाटर एंड एयर। लेकिन ये फूड, ये वाटर और एयर तीनों ही आज के समय में प्योर नहीं रहे हैं, हेल्दी नहीं रहे हैं। जैसा आप भी जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूशन है, और फूड उसमें अडल्ट्रेशन है, मिक्सिंग है, जंक फूड्स हैं, अनहेल्दी फूड हो गए हैं। तो ये जो विजिबल इनपुट हम हमारे शरीर में ले रहे हैं इन्हें हम कैसे प्योर करें, कौन सी चीजें लेनी चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो विजिबल इनपुट्स में हम बात करेंगे फूड, वाटर और एयर की। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड का। ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे तन पर तो इफेक्ट डालता ही है, फिजिकल बॉडी पर, उसके साथ साथ वो हमारी मन माइंड को भी अफेक्ट करता है, ऐसा वैदिक साइंस में कहा गया है। इसीलिए फूड क्या होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफस्टाइल में। आज जो डिजीजेज हैं, ओबेसिटी, उसमें फूड का बहुत बड़ा रोल है। ओबेसिटी के अलावा बहुत सारी डिजीजेज वो भी फूड की वजह से हैं, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज, बहुत सारी पॉइजनिंग, बहुत सारे टॉक्सिसिटी बॉडी के ऑर्गन्स में हो रही है अनहेल्दी फूड की वजह से। अनहेल्दी फूड में क्या चीजें आती हैं, पहले तो वो चीजें जिन्हें हम जंक फूड कहते हैं, जिसे मीडिया और मार्केटिंग के द्वारा आपको हेल्दी बनाकर बेचा जा रहा है। समझना होगा हमें इन्हें, सो कॉल्ड फ्रोजन फ्रूट्स, फ्रोजन फूड, पैक्ड आइटम्स, जंक फूड, रेडी टू ईट फूड, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है हमारे फिजिकल बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को। दूसरा पार्ट आता है कि हेल्दी फूड है क्या और कौन से फूड लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सीज होता है। आज वेलनेस की इंडस्ट्रीज, या यूं कहें सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री, इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि आपको बहुत सारी चीजें सेल की जा रही हैं हेल्दी बताकर, लेकिन उसमें से मोर देन 60% 70% की जरूरत ही नहीं है। एक होड़ सी मच गई है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है, ये हेल्दी है, वो हेल्दी है। आप देख रहे होंगे डेली विज्ञापन में आते हैं बच्चों के लिए, हॉर्लिक्स पिलाइए, बोनविटा पिलाइए, हेल्दी फूड्स पिलाइए, एनर्जी ड्रिंक्स पिलाइए, कैंड फ्रूट्स पैक्ड। क्या ये सारी चीजें हेल्दी हैं, कभी हमने सोचा इस बारे में? समझना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक ग्रुप स्मार्ट लोगों का, जिनका काम आपकी कॉन्शियसनेस को हैक करना है, जिनका काम आपको हिप्नोटाइज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर, डाइट के अंदर भी आपकी कॉन्शियसनेस को हैक कर रहा हो। एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जाना है, हमें दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अकल खुद लगानी है, समझना है कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। फिर बात आती है कि जो फूड अवेलेबल है, हेल्दी फूड्स जो हम जानते हैं कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, उनमें भी तो अडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावटें हो रही हैं। तो आज की डेट में हेल्दी फूड मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज का टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें यह समझना बहुत जरूरी है क्या चीजें लेना है डाइट में और क्या नहीं। एनर्जी बॉडी के द्वारा आप ये चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा फूड आपके लिए हेल्दी है और कौन सा नहीं। डाइटिशियन, ये जो हार्ट चक्र है यहां पर ग्रीन कलर का, ये डाइटिशियन है, ये आपका इनर डाइटिशियन है। इसे मालूम है कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। चेक कैसे करेंगे, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूं। जो भी फूड आपको चेक करना है कि आपकी ऑरा के लिए, आपकी एनर्जी बॉडी के लिए, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा है, कंपेटिबल है या नहीं, उसका एक सैंपल अपने हार्ट चक्र के पास रख के देखें और इस तरीके से अपनी न्यूरोमस्कुलर पावर को चेक करके देखें, पता करें कौन सा फ्रूट्स, कौन सी डाइट आपके लिए कंपेटिबल है। शायद अभी आपको इतना समझ नहीं आया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, किस तरीके से टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। मैं अभी आपको एक वीडियो के साथ जोड़ता हूं, उस वीडियो में मैंने डेमोंस्ट्रेट किया है कि कैसे आप कोई फूड आपके लिए हेल्दी है या नहीं है इस बात का पता खुद घर पे कर सकते हैं अपनी एनर्जी बॉडी के द्वारा। कनेक्ट होता करता हूं मैं आपको इस वीडियो के साथ। एक्सपेरिमेंट आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। हम सब लोग कई बार ये सोच के परेशान होते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या चीज हेल्दी होती है और क्या अनहेल्दी है। डाइटिशियन के पास जाते हैं, वेलनेस एक्सपर्ट के पास जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका डाइटिशियन, आपका वेलनेस एक्सपर्ट आपके अंदर बैठा हुआ है। यस, यहां पर यह आपका हार्ट चक्र है। इस हार्ट चक्र के द्वारा आप अपनी बॉडी के लिए कौन सा फूड अच्छा है, कंपेटिबल है, चेक कर सकते हैं। कौन सा फूड अनहेल्दी है, आपकी बॉडी के लिए कंपेटिबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। जानना चाहेंगे, ये एक्सपेरिमेंट बायोफील्ड कंपेटिबिलिटी को टेस्ट करता है। मैं आपके सामने इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं ताकि आप घर में खुद अपने ऊपर टेस्ट कर सके और इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सके। जुड़िए मेरे साथ, बुलाते हैं एक पार्टिसिपेंट को। आइए, सामने खड़े हो जाएं मिस्टर विनय, आप ऐसे खड़े हो जाएं ताकि कैमरे की तरफ चेहरा रहे। आप लाइफ में कई बार ये सोचते होगे कि सर मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा आप इधर आ सकते हैं। यस, ये हैं मिस्टर विनय जिनके ऊपर आज हम फूड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आपको भी कई बार लगता होगा कि काश मुझे पता चल जाए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिखाने वाला हूं कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कंपेटिबल है, आप खुद चेक कर सकते हैं अपने बायोफील्ड कंपेटिबिलिटी टेस्ट के द्वारा। सेम तरीका, सबसे पहले हम इनका न्यूरोमस्कुलर पावर चेक करेंगे। आप अपना न्यूरोमस्कुलर पावर कैसे चेक करवाएंगे, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ के द्वारा। इसको टाइट करेंगे, यहां लॉक करेंगे, मैं गिराऊंगा, आपको रोकना है। टाइट कीजिए, टाइट, ये देखिए, ये देखिए, मैं गिराने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये यहां पर टाइट है। अब इनके बायोफील्ड के अंदर मैं डिफरेंट फूड आइटम्स को लेकर आऊंगा और ये अपने हार्ट चक्र से पूछेंगे कि ये इनके लिए सुटेबल है या नहीं है। फिर हम इसको जानेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आता है। जरा आप मुझे देंगे कुछ वेज आइटम, कुकम्बर को देखते हैं। रखिए फिर वही सेम टू सेम अपने बायोफील्ड में रखिए और पूछिए इसके द्वारा, हार्ट चक्र से पूछिए, देखते हैं फिर से। अच्छा है आपके लिए, ये भी अच्छा है। ओके, अब हम लेते हैं गाजर, कैरेट, कहा जाता है विटामिन ए का रिच सोर्स है। जरा देखते हैं इनके लिए अच्छा है कि नहीं है। टाइट, टाइट,
गुड, अच्छा है, आपने खुद महसूस कर रहे हैं यहां पर एक रेजिस्टेंस। अब आप दीजिए मुझे अल्कोहल। आप अल्कोहल लेते हैं क्या? ड्रिंक करते हैं कभी कभार? कभी कभार करते हैं, क्यों? ये एक एब्सोल्यूट वोदका है, वोदका हम इन्हें देते हैं, हालांकि ये खुद ड्रिंक करते हैं बताते हैं, तो इनके लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। देखते हैं, रखिए दिल के पास और चेक कीजिए। ओके, टाइट कीजिएगा फिर से, ठीक है? ये देखिए, मैं हल्का सा फोर्स लगा रहा हूं, बस मात्र हल्का सा। आप टाइट कीजिए, आप अपना पूरा जोर लगाइए। ये देखिए, ये रोक ही नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, यानी इसकी कंपैटिबिलिटी इस व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर ये इसको लेंगे तो ये अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं। ब्रांड कोई भी हो आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के साथ, वोदका है, बियर है, अल्कोहल कितनी क्वांटिटी का है, आप अपने घर में खुद चेक करें। जो ब्रांड आप लेते हैं उसके साथ अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट करें, किसी भी फैमिली मेंबर को बुलाकर। ओके, फिर देखते हैं, दीजिए मुझे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अलग अलग लेते हैं। पहले सिगरेट लेते हैं। आप स्मोक करते हैं सर? स्मोक नहीं करते हैं। ये सिगरेट देखते हैं, सिगरेट के साथ इनका क्या कंपेटिबिलिटी है। रखिए, उस हाथ में चेक करेंगे जिस हाथ में चाहें आप, ये आपकी चॉइस है, जिस पावर में आपको ज्यादा लगता हो उसी में। ओके, ठीक है। ये देखिए, आप पूरा जोर लगाइए, आपको सोचना नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूं नहीं पीता हूं, आपको जोर लगाना है, ठीक है। ये कितना भी जोर लगा लें नहीं रोक पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके हार्ट चक्र के बायोफील्ड में ये सिगरेट का बायोफील्ड कंपेटिबल नहीं है। ओके, सिगरेट के साथ बीड़ी, हो सकता है बीड़ी आपके लिए कंपेटिबल हो, देख लेते हैं। लीजिए सर, बीड़ी पीते हैं क्या? नहीं पीते, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, ये देखिए, बीड़ी भी नहीं। अच्छा, कोई पेन मिलेगा मुझे? एक पेन देंगे, हो सकता है कि आपको लग रहा हो अगर हम बीड़ी को हटा के, सिगरेट को हटा के एक पेन को रख देते हैं, ठीक है, ये लीजिए, ये वापस ले लीजिए मुझसे, इनका काम नहीं है। अब देखते हैं, अब इन्होंने बीड़ी सिगरेट की जगह एक पेन को रखा, अब आपको क्या लगता है? चलिए टेस्ट करके देखिए, टाइट कीजिएगा। ये देखिए, मैं जोर लगा रहा हूं लेकिन ये यहां पर आपको रेजिस्टेंस फील हुआ। तो बीड़ी, सिगरेट और पेन दिखने में तीनों एक ही टाइप की चीज है, यानी ये साइकोलॉजिकल गेम नहीं है, ये एनर्जी फील्ड का गेम है। चलिए, टोबैको पाउच, वो विमल कोई भी कंपनी का लीजिए, और भी दीजिए, एक दो कंपनी और दे दीजिए, कंपनी से फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी कंपनी की यहां पर नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूं, कोई भी गुटखा, कोई भी तंबाकू, कोई भी किसी प्रकार का जर्दा रखती है अपने फील्ड के अंदर, ये तो खाते ही होंगे आप कभी कभार। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, राइट, रोकिएगा आप पूरा। ये देखिए, सिंपल, हल्का सा फोर्स लगा रहा हूं, गिर जा रहा है, सिंपल, कितना भी जोर लगा लें इनके साथ नहीं रुकेगा। मिल्क, मिल्क पीते हैं सर? देखते हैं मिल्क के साथ क्या होता है। हमने एक मिल्क का पाउच यहां पर रखा हुआ है, इस मिल्क के पाउच के साथ टेस्ट करते हैं। लीजिए, रखिए फील्ड में और पूछिए फिर अपने दिल से अगेन, और करते हैं टेस्ट फिर से। ओके, चलिए ठीक है। ये देखिए, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, पूरा जोर लगाने के बाद भी हल्का सा ही मैं इसको डिस्टर्ब कर पा रहा हूं, उसके बाद नहीं, क्योंकि मिल्क इनके लिए अच्छा है। आप इस तरीके से सर जो चाहें अपनी बॉडी पर टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बैठिए। इस डेमोस्ट्रेशन को दिखाने का मेरा मकसद यह है कि आप डिफरेंट फूड का कंपेटिबिलिटी अपने बायोफील्ड के साथ चेक करें। करना कैसे है, इस हाथ को आपको टाइट करना है, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करवाना है, यह आपकी बेसलाइन न्यूरोमस्कुलर पावर हो गई। फिर इसके बाद उस जो भी फूड के लिए आप चेक करना चाहते हैं उसको यहां पे रखें, हार्ट चक्र के पास, अपने दिल से पूछें, अपने बायोफील्ड से पूछें, क्या ये मेरे लिए कंपेटिबल है। अगर कंपेटिबल है तो मेरा एनर्जी बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, और अगर ये नॉन कंपेटिबल है तो मेरा एनर्जी डाउन होगा। फिर अदर पर्सन को आप टेस्ट करने को बोलें और देखिएगा, अगर वो नॉन कंपेटिबल फूड है तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। सिंपल, कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं, वेज, नॉन वेज, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, मिल्क, डिफरेंट फूड आइटम्स, खुद से चेक करें, खुद के डाइटिशियन, खुद के वेलनेस एक्सपर्ट बने। तो देखा आपने, इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट के द्वारा
आप डिफरेंट फूड आइटम्स का अपने लिए कंपेटिबिलिटी टेस्ट करके देखें। इस एक्सपेरिमेंट को मैं लोगों को इसीलिए सिखाता हूं कि अपनी अकल लगाएं, दिखावे पे ना जाएं, मार्केटिंग पे ना जाएं, एडवर्टाइजमेंट में ना जाएं। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, जितने भी एनर्जी बूस्ट ड्रिंक्स हैं, चेक करके देखें अपने बच्चों के लिए, मुझसे मत पूछें। कुछ रिसर्च बताती है कि जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा हाई मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से वो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड आप खुद टेस्ट करके देखें। टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल खुद टेस्ट करके देखें, मुझसे मत पूछें। किसी का भी पॉजिटिव नहीं आएगा। यानी हर फूड आइटम का एक कंपेटिबिलिटी होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, और उस फूड फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आपकी बॉडी की एनर्जी, बॉडी की फ्रीक्वेंसी कंपेटिबल है तो आपका न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ हाई रहेगा, अदरवाइज ये गिर जाएगा, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डाइट क्या होनी चाहिए। तीन प्रकार के फूड होते हैं एनर्जी के हिसाब से। एक होते हैं सात्विक फूड, इन्हें कहा जाता है कंडक्टर फूड। ये हाई एनर्जी फूड होते हैं, इनके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और जब इन्हें बॉडी में दिया जाता है तो ये एनर्जी चैनल्स को ओपन रखते हैं और एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में, नाड़ियों में प्रॉपर वे में चलता रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर फूड हैं। दूसरे होते हैं राजसिक फूड, जिनमें सेमीकंडक्टर फूड आते हैं, सेमीकंडक्टर। अगर ये फूड खाएंगे तो लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, ये बॉडी के अंदर पूरी तरीके से फ्लो नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा। और थर्ड फूड होता है तामसिक। अगर ये फूड, इनको हम कहें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें कहा जाता है बैड कंडक्टर। यानी जब इन फूड को हम ज्यादा मात्रा में बॉडी में लेंगे तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को स्टॉप कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए एनर्जी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और बैड कंडक्टर, ये तीन फूड आइटम्स को मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर वैदिक साइंस में इन्हें गिनेंगे तो सात्विक कंडक्टर फूड, राजसिक सेमीकंडक्टर फूड और तामसिक जो कि नॉन कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी को टैप कर रहे हैं, किसमें? अपने क्राउन चक्र से, अपनी 72,000 नाड़ियों में और 7 चक्रों में। और दूसरी तरफ तामसिक फूड लेकर आप शरीर के अंदर ऐसे केमिकल पैदा कर रहे हैं जिससे बैड कंडक्शन हो रहा है, यानी जो आपने एनर्जी टैप किया वो एनर्जी नाड़ियों में फ्लो नहीं होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, अब आपको तामसिक फूड को धीरे धीरे कम करते जाना है। कोशिश करनी है सात्विक फूड ज्यादा हो और कुछ अमाउंट में राजसिक फूड। बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस डाइट। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। यानी जब सात्विक फूड आप लेंगे तो आपकी थॉट्स और इमोशन अच्छी वैरायटी की आएंगी। किस प्रकार की? आप हैप्पी ज्यादा रहेंगे। सात्विक फूड जो होते हैं ये आपके अंदर किस प्रकार की थॉट्स लेकर आते हैं, हम साइकोनिरोबिक की बुक से ही इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो फूड्स होते हैं ये आपके अंदर सात्विक फूड जो होते हैं ये वो फूड्स होते हैं जिन्हें आप बिना पकाए खा सकते हैं, रॉ फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिनको हम अगर जमीन में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, सॉइल में डाल दें, तो वो जर्मिनेट होकर पौधे का निर्माण कर सके, अपने जैसा फूड और बना सके। अपने जैसा फूड और बना सके। तामसिक फूड वो होते हैं जिन्हें रॉ नहीं खाया जा सकता, उन्हें कुछ टेम्परेचर पर पकाने की जरूरत पड़ती है। और ये राजसिक फूड के बारे में बताया। तामसिक फूड वो होंगे जो जिन्हें बहुत ज्यादा पकाना पड़ेगा और जिनमें लाइफ फोर्स एनर्जी बिल्कुल जीरो होती है, ये डेड फूड होते हैं। इनमें आता है चिकन, मटन, नॉन वेज, जंक फूड्स। तो जब आप ऐसे फूड लेंगे जिसमें लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में है, तो आपकी बॉडी में लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। पहली चीज, लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा, क्योंकि ये कंडक्टर हैं, तो जो आपने स्पिरिचुअल एनर्जी मेडिटेशन के दौरान टैप की है उसके फ्लो में आपको हेल्प करेंगे। और दूसरा है कि तामसिक, अपोजिट वेराइटी, एक इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बिल्कुल जीरो है, दूसरा ये बैड कंडक्टर है। तो ये दो तरीके से हार्म कर रहा है, आप एनर्जी तो ले नहीं रहे हैं और बैड कंडक्टर आपकी बॉडी के अंदर एड ऑन कर रहे हैं जिससे एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होगा। एक होता है कैलोरी और एक होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। कैलोरीज डाइट का न्यूट्रिशियस पार्ट या एनर्जी पार्ट होता है, लेकिन जो मैं जिस एनर्जी की बात कर रहा हूं, लाइफ फोर्स एनर्जी, वो एक अलग चीज है। वो पोटेंशियल है उसके अंदर, बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिकल करंट को बढ़ाने का। इनफैक्ट जितने सात्विक फूड होते हैं उनका कैलोरी वैल्यूज भी कम होता है, और जितने तामसिक फूड होते हैं उनका कैलोरी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। सात्विक फूड में एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है, कैलोरीज वैल्यू कम होती है, और तामसिक में जस्ट उल्टा होता है। एक पावर पॉइंट के साथ मैं आपको ये तामसिक, राजसिक और सात्विक फूड का डिस्क्रिप्शन देता हूं। ये देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड के बारे में बताया गया है। सात्विक फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, लो कैलोरी, हाई न्यूट्रिशियस। राजसिक मीडियम वैरायटी के फूड होते हैं जिन्हें ऑयली या कुक करना पड़ता है। तामसिक बिल्कुल इंफीरियर क्वालिटी के फूड होते हैं जिसमें आता है नॉनवेज और जंक फूड्स। क्या होना चाहिए डाइट के अंदर, ये एट प्रेजेंट अभी ये चल रहा है, तामसिक सबसे ज्यादा, राजसिक उससे कम और सात्विक सबसे कम, ये एट प्रेजेंट चल रहा है। जबकि हमें करना क्या है, उल्टा करना है। सात्विक फूड लेने से इस प्रकार के और बैलेंस्ड चक्रास रहेंगे, राजसिक फूड लेने से ये क्वालिटीज डेवलप होती हैं, ऑब्सेसिव, एडिक्टेड, ग्रीड, सेल्फिश। और ये तामसिक सबसे खराब होते हैं, इसमें डिप्रेशन, डैमेज, नेगेटिव थॉट्स, डलनेस आती है। जितने भी सात्विक फूड होते हैं उसमें ज्यादातर एल्कलाइन होते हैं, और जितने भी तामसिक फूड हैं वो एसिडिक हैं। और एसिडिक और एल्कलाइन डाइट के हिसाब से भी समझें तो हमारे बॉडी को एल्कलाइन फूड ज्यादा जरूरत होती है। जितना बॉडी एल्कलाइन होगा उतना ही वेलनेस की मोड होगी, उतना ही शरीर हेल्दी रहेगा। डाइट वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पूरे पार्ट्स को कवर नहीं करेंगे। मैं आज केवल आपको सात्विक, राजसिक और तामसिक, हाई एनर्जी डाइट, लो एनर्जी डाइट, मीडियम एनर्जी डाइट, उसके हिसाब से बताना चाहता हूं। ये देखिए, पीएच के अकॉर्डिंगली ग्रीन फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एल्कलाइन होती हैं, तो होना क्या चाहिए, 60-70% फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, 60-70% डेली का, 30% राजसिक फूड लिया जा सकता है, और तामसिक ना ही ले तो अच्छा है, अगर लेना भी पड़े तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें तामसिक को अवॉइड करें, राजसिक 30% के आसपास और 60-70% जो है अप्रोक्सीमेट आपका सात्विक फूड हो। फिर विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें आपको एक बैलेंस डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप डाइट को अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो वेट कभी नहीं बढ़ेगा, और डाइट को एज ए मेडिसिन लेंगे, फूड को अगर एज ए मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन कभी आपको फूड की तरह नहीं लेनी पड़ेगी। कहा भी गया है आइदर टेक फूड एज मेडिसिन और टेक मेडिसिन एज फूड, ये नेचुरोपैथी में ऐसा कहा गया है, यानी फूड अपने आप में एक मेडिसिन है। नेचुरोपैथी में डिटॉक्स डाइट भी बनाई जाती है, डिफरेंट प्रकार की डाइट जो वेट लॉस के लिए होती है, यानी कहीं ना कहीं फूड हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी करता है अगर डाइट को हम एक प्रॉपर वे में प्लान करते हैं। लेकिन साइकोनेरोबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, 3 प्रकार की डाइट, गुड कंडक्टर डाइट, मीडियम और बैड कंडक्टर, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक खाने से सात्विक विचार आएंगे, राजसिक खाने से राजसी विचार आएंगे, तामसिक खाने से तमस, तमस मतलब बिल्कुल इंफीरियर क्वालिटी, सारा दिन केवल डिप्रेशन डिप्रेशन लगेगा, आलसीपन लगेगा, इनएक्टिवनेस लगेगी, हैवी वेट महसूस करेंगे, और सात्विक खाएंगे तो हल्का महसूस होगा, मन भी प्रसन्न चित्त रहेगा, बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो पहला पार्ट हुआ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डाइट को समझा। दूसरा पार्ट है कि फूड को चार्ज करके खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, चार्ज करने की जरूरत है क्या, क्यों जरूरत पड़ती है चार्ज करने की। देखिए, जब भी हम कोई फूड खाते हैं, फूड बनाने वाला जो है, जो उस फूड को प्रिपेयर कर रहा है, जो खाना बना रहा है, उसका मूड कैसा है, उसकी इमोशंस कैसे हैं, उसकी थॉट्स कैसे हैं बनाते समय, वो सारी चीजें फूड के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर का खाना सबसे अच्छा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि घर का खाना सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो खाना फैमिली मेंबर्स जब बनाते हैं उसमें खाने के साथ साथ प्यार की फीलिंग होती है, लव की फीलिंग होती है। सेम टू सेम जब हम बाहर खाने जा रहे हैं, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए और जो वहां का कुक है आज वो सुबह से गुस्से में है, टेंशन में है, तो वो जो वाइब्रेशन वो अपने माइंड से इस यूनिवर्स में फैला रहा है, इस ब्रह्मांड में फैला रहा है, अपने नियर बाय स्पेस में फैला रहा है, वो फूड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जब आप उस खाने को खाएंगे तो वो वाइब्रेशंस भी आपकी बॉडी में चली गई। तो खाना बनाने वाला, खाना परोसने वाला, सर्व करने वाला, दोनों की इंटेंशन फूड के अंदर एड ऑन हो जाती है। तीसरा, खाते समय हम किस इंटेंशन में हैं, उसका असर भी फूड के ऊपर भी पड़ेगा और हमारे डाइजेशन में भी। तो जो खाना बना रहा है, खाना बनाते समय उसका माइंड कूल होना चाहिए, लव की फीलिंग होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छे होने चाहिए। इसीलिए वैदिक समय में आपने देखा होगा, हमारे पुराने समय में किचन एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्पेस होता था जहां पर पूरे मंत्रोच्चारण करके, फूड को चार्ज करके, पानी को चार्ज करके, प्रार्थना करके फूड का प्रिपरेशन होता था। कुक पूरी इंटेंशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे प्यार के साथ खाना बनाता था और उस खाने को फिर बहुत शानदार तरीके से परोसा जाता था। परोसने के बाद फूड के खाने से पहले प्रार्थना की जाती थी, चार्ज किया जाता था, फिर खाना खाया जाता था। आज बनाने में गड़बड़, परोसने में गड़बड़, खाने में गड़बड़। मैं बताता हूं क्या क्या गड़बड़। सबसे पहले समझिए खाना बनाने का प्रोसेस। आज देखिए जरा रेस्टोरेंट में जाके कितनी गंदगी रहती है। हम रेस्टोरेंट के 5 स्टार रेस्टोरेंट में बाहर तो देख लेते हैं बैठने की जगह कहां है, कैसा है, वहां तो अच्छा डेकोरेशन है, इंटीरियर है, लेकिन किचन जहां बनाने का पार्ट है वो कैसा है, फूड किस इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है। जहां मनी की बात आ जाती है, क्या आपको लगता है कि वहां प्यार के साथ खाना बन सकता है? 10 व्यक्तियों का खाना बनाना और 10,000 व्यक्तियों का खाना बनाना बहुत डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, वहां के बाद सर्व करने की बात आती है। आजकल आप देखते हैं शादी ब्याह में बफे सिस्टम रहता है, बफे सिस्टम, खड़े होके खाने का, प्लेट लिए, प्लेट में खाना डाले, वो रोटी यहां से नीचे गिर रही है, पापड़ वहां से नीचे गिर रहा है, अचार उसके साथ मिल रहा है, पूरा प्लेट तो हम भर लेते हैं, और खाने समय ना बैठ पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं ठीक से। ये कोई खाने का तरीका है बफे सिस्टम? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मजबूरी में खाना जरूर पड़ता है, मैं तलाश करता हूं कि कहां पर बैठने की टेबल मिल जाए। और जो हमारा वैदिक समय था उस समय बताया गया था कि जब आप खाना खाते हैं जमीन पर बैठ के खाएं, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे आप खाना खाते समय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरी ओपन हो। और परोसने वाला प्यार से परोसता था वाइब्रेशंस के साथ। आजकल तो आप देखते हैं जब जाते हैं पार्टी में, शादी में, ब्याह में, वो लाइन लगी होती है, जितनी बड़ी शादी उतनी बड़ी लाइन। मैं कुछ साल पहले, करीब करीब 1.5-2 साल हो गए, शहर के किसी एक नामी व्यक्ति की शादी थी, और मैं जब उस शादी में गया तो 2 घंटा तो पार्किंग में लगा। अब नहीं जाओ तो भी परेशानी और जाओ तो परेशानी। 2 घंटा पहले पार्किंग में लगा, फिर पार्किंग के बाद करीब करीब 1/2 घंटा स्टेज पे चढ़ने में लगा दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए, और खाने का तो बात ही मत छोड़ दीजिए, इतनी लंबी लंबी लाइन कि मुझे लगा कि बस जो मिल जाए वो लेके थोड़ा सा चलते बनते हैं। क्या मतलब ऐसे दिखावे का कि हम इतने लोगों को बुला रहे हैं और इतनी भीड़ हो गई है, और आज देख तो रहे हैं कोरोना ने क्या हालत कर दी है। पहले के शादी ब्याह देखिए, आयोजन देखिए, बुलाया जाता था, बिठाया जाता था, परोसा जाता था, सारी चीज हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर हमारे इंडियन ट्रेडिशंस का सत्यानाश कर दिया है। वो खाना हमें अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होता। वैरायटीज तो बहुत रहती हैं, संतुष्टि नहीं आती है। तो यानी कहने का मतलब फूड को चार्ज करना इसीलिए जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप खाना बाहर से लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए आपने मिठाई खरीदा किसी दुकान से, वो मिठाई आपने खाया, उस मिठाई को आपके आपके खरीदने से पहले कुछ लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने इच्छा जताई होगी उसे खरीदने की, हो सकता है कोई बच्चा आके उसका बच्चे का मन ललचाया हो और उसके पास पैसे नहीं हो खरीदने के लिए। यानी उस फूड के अंदर इंटेंशंस बहुत सारे लोगों की लगी हुई है और आप उस फूड को खा रहे हैं। ये 2-3 कारणों से उस फूड को चार्ज करके खाना चाहिए जिस फूड को हम ले रहे हैं। फूड चार्ज करने का तरीका हमारे वेदों में बताया गया, मंत्रों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हम बात करते हैं साइकोनिरोबिक की। साइकोनिरोबिक के अंदर फूड को चार्ज करने के लिए हमें येलो कलर की जरूरत होती है, जो कि हमारे सोलर प्लेक्सस का कलर है, ये कलर सोलर, क्योंकि अग्नि तत्व इस चक्र से रिलेटेड है। अग्नि तत्व, अग्नि अच्छे से बनेगी तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो कैसे किया जाता है? कंसंट्रेशन मेथड से। जैसा हमने कल बात किया था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं 3D इमेज विजुअलाइजेशन के द्वारा, स्टीरियोग्राफिक इमेज विजुअलाइजेशन के द्वारा, हम अपने ब्रेन को हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे हाई वाइब्रेशन पे? किस कलर की फ्रीक्वेंसी के साथ? येलो कलर की फ्रीक्वेंसी के साथ। वो कैसे होगा कि आपको 3 मिनट के लिए वो येलो कलर की प्लेट उसके अंदर जा देखना है। कब तक? जब तक आपको उसमें से वो 3D इमेज दिखाई नहीं देता, विजुलाइज करना है। जैसे ही आपने वो इमेज को देखा, इसके बाद 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज और 21 टाइम क्लॉकवाइज आईज को मूव करना है उस इमेज के ऊपर। फिर आंखें बंद करके उस इमेज को विजुअलाइज करना है यहां पर, और विजुअलाइज करने के बाद ये जो आपकी माइंड और ब्रेन की सेल्स हैं, अब ये हाई फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना शुरू हो गई है। समझ लीजिए कि आपका ब्रेन और माइंड एक ट्यूनिंग फॉग की तरह काम कर रहा है, और जैसे ही आप उस 3D इमेज विजुअलाइजेशन को करते हैं तो आपका यह ट्यूनिंग फॉग इस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होना शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई और खाना जो है फूड, वहां पर फ्रीक्वेंसी अभी कम है येलो कलर की, तो आपको वो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी यहां से वहां ट्रांसफर करनी है। कैसे, कि जब आप उस खाने को अपने पास देखेंगे और उस येलो कलर के इमेज को देखिए कि इस पूरे फूड के अंदर वो येलो कलर ट्रांसफर हो रहा है, तब आप येलो कलर की फ्रीक्वेंसी से उस फूड को चार्ज कर देंगे। इसके बाद अब फूड पार्टिकल्स येलो कलर की फ्रीक्वेंसी से चार्ज हो गए, मतलब उसमें अग्नि तत्व एक्टिवेट हो गया। अब आपको क्या करना है, उसमें इंटेंशन डालनी है। इंटेंशन क्या डालनी है, आपको उस फूड को पहले थैंक यू बोलना है गॉड को कि हे भगवान आपका धन्यवाद जो मुझे इतना अच्छा खाना नसीब हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती। फिर धन्यवाद देने के बाद बोलना है कि इस फूड को गॉड की डिवाइन येलो कलर की एनर्जी से अब ये फूड चार्ज हो गया है, इसको खाने के बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, ये फूड मेरी बॉडी के अंदर पूरे तरीके से डाइजेस्ट होकर फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों का फ्लो मेरी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, सोल के अंदर बढ़ाएगा, और इस फूड से मुझे पूर्ण रूप से एनर्जी और संतुष्टि मिलेगी। आप जब इस तरीके से वो करेंगे तो ये फूड अब अमृत के समान बन गया है। ये इंटेंशंस क्या डालनी है, ये भी मैं आपको नोट्स की फॉर्म में शेयर करूंगा, क्या प्रेयर करनी है इंग्लिश में या हिंदी में, किस तरीके से करनी है, उसका प्रोसेस है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। वीडियो भी बनाया गया है, उस वीडियो को देख के भी आप सीख सकते हैं कैसे करना है। अब एक प्रश्न आएगा कि सर फूड तो हम कहीं पर भी खाते हैं तो क्या वो प्लेट साथ में लेकर घूमे? यस, स्टार्टिंग में आपको 21 दिनों तक प्लेट से करना है जब घर में है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये इमेज आपके यहां पर परमानेंट स्टेबलाइज हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप आंखें बंद करेंगे इमीडिएट आप येलो कलर विजुअलाइज करेंगे, आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी येलो कलर में आ जाएगी। इवन आपकी सब्जी में येलो कलर की सब्जी, दाल तो होता ही होता है, दाल को देखें और येलो कलर को विजुअलाइज करें तो आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, और प्योर इंटेंशन के साथ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ फिर उसे चार्ज करें। जब आप इस तरीके से चार्ज करेंगे तो अगर उस फूड में नेगेटिव वाइब्रेशन है तो वो हटेंगी, अगर जीरो वाइब्रेशन है, न्यूट्रल है, तो उसमें प्लस वाइब्रेशन आएंगी। किसी ने गलत इंटेंशन से खाना बनाया है वो हटेगा। ये सारी चीजें वैदिक समय में लाइफस्टाइल का हिस्सा हुआ करती थी। दूसरा पार्ट आता है वाटर चार्जिंग। पहले बात हम करेंगे कि क्या वाटर को चार्ज करने की जरूरत क्यों है। जैसे फूड को तो हमने समझा, अब वाटर को क्यों चार्ज करना है। देखिए वाटर जो है, जल, आज जल में एनर्जी नहीं है। क्यों एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसकी नेचर क्या है वाटर की, वो है फ्री फ्लोइंग, बहना। लेकिन हमने उसे किस में बंद कर दिया है, बोतलों में बंद कर दिया है, आरओ में बंद कर दिया है, मटके में बंद कर दिया है। तो अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपकी एनर्जी कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम टू सेम जब हम एक झरने के नीचे नहाते हैं, ऊपर से झरना गिर रहा है और आप उसके नीचे खड़े होकर एनर्जी लेते हैं तो आप एकदम से एनर्जेटिक फील करते हैं, और एक स्नान, एक बाथ आप अपने बाथरूम में ले रहे हैं बाल्टी और मग के साथ, इस में और झरने के नीचे नहाने में जमीन आसमान का अंतर होता है एनर्जी में। क्यों, क्योंकि वहां फ्री फ्लो वाटर है और ये स्टोर्ड वाटर है। सेम टू सेम जो झरने का पानी होता है वो सबसे प्योर वाटर होता है। आजकल इसमें भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्टंट चल रहे हैं, वो बॉटल के अंदर हिमालयन वाटर लिख देते हैं, भाई हिमालय के अंदर से अगर वो 10 साल पहले लिया गया होगा तो क्या वो हिमालय का वाटर बच गया? चलो 10 साल छोड़ो, अगर वो एक महीना पहले भी स्टोर किया गया होगा तब भी उसकी एनर्जी जीरो हो गई। तो दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। ऐसा जो पैक्ड बॉटल है उसमें हिमालयन वाटर नहीं आता। हिमालयन वाटर मैं बताता हूं कहां से मिलता है। मैं गया था मंसूरी, वहां पर मैंने ऑनलाइन एक होटल बुक किया था और जब मैं पहुंचा वहां पर होटल में तो देखकर हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था कि वो होटल जमीन पे सड़क से करीब करीब 320 सीढ़ियां ऊपर था। 320 सीढ़ियां, मेरी हालत खराब हो गई कि यार यहां तो रहना मुश्किल हो जाएगा, सामान चढ़ाना और 320 बार उतरना चढ़ना जब भी कहीं घूमने जाना होगा। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, सीजन का समय था और होटल मिल नहीं रहे थे, तो मैं उनको फोन किया जो ऑनर थे उनके, उन्होंने वेटर को भेजा, एक पर्सन को भेजा, सामान लेके गया। लेकिन जब मैं उस होटल में रहा, उनकी जो ऑनर थी मिसेस भल्ला थी वहां, उन्होंने कहा सर आप यहां रहिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। वो बिल्कुल एकदम पहाड़ के ऊपर था और वहां पर उन्होंने कहा कि सर आप जितनी भी पानी की बॉटल्स लाए हो उन्हें फेंक दीजिए, ये यहां पर नहीं चलेगा, ये उनकी प्रोटोकॉल में शामिल था। तो मैंने कहा फिर पानी कहां से पिएंगे? तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ के ऊपर झरना बहता है वहां से उन्होंने एक पाइपलाइन डाला हुआ है और सीधा इनके घर में आता है, उस रिसॉर्ट में आता है। और वो पानी उन्होंने जग के द्वारा मुझे, मैं वहां 5 दिन रहा, 5ों दिन उन्होंने मुझे वो वाटर पिलाया। ना कोई आरओ था ना कुछ था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसमें इंफेक्शन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया, पूरी फैमिली ने वो पानी पिया और बहुत जबरदस्त खाना था, बहुत जबरदस्त पानी था। और वो जो इतनी बार मेरी ऊपर नीचे एक्सरसाइज हुई उससे फिटनेस लेवल और बढ़ गया। तो रियल वाटर सही में झरनों में ही मिलता है, लेकिन उस पानी में एनर्जी होती है। तो इस पानी को कैसे चार्ज किया जाए? इस पानी को चार्ज करने के लिए हमें ऑरेंज कलर से चार्ज करना होगा ये, क्योंकि ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है सैक्रल प्लेक्सिस, इसका तत्व होता है जल। जल तत्व ऑरेंज कलर के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेथड क्या है? सेम प्लेट्स के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा। जब हम कंसंट्रेशन के द्वारा यहां पर ऑरेंज कलर को एक्टिवेट करेंगे, यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, फिर हमें वाटर बॉटल को लेना है और एनर्जी को वहां पर ट्रांसफर करना है। ऐसा महसूस होगा, आपको इमेजिन करना है कि ये वाटर बॉटल पूरा ऑरेंज जूस से भर गया है, जो जल था वो पूरा ऑरेंज जूस बन गया है। और बनने के बाद फिर उसमें इंटेंशन डालनी है कि हे जल देवता, अब आप डिवाइन ऑरेंज कलर की एनर्जी से चार्ज हो गए हैं और अब आपको जो भी पिएगा उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उसके सातों चक्र अलाइन रहेंगे, माइंड बॉडी ब्रेन और सोल चारों लेवल पर हेल्थ और हैप्पीनेस आएगा और दिन भर मैं एनर्जेटिक फील करूंगा। यह हुई जनरलाइज्ड इंटेंशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं, इस जल के अंदर में मेमोरी होती है, यादशात होती है, जो आप उसमें इंटेंशन डालेंगे वो उसमें स्टोर हो जाएंगी। 24 घंटे तक वाटर के अंदर ये इंटेंशन रिटेन होती है। और इस वाटर को अगर आप किसी दूसरे को पिला दें ये बोलकर कि, जैसे मान लीजिए किसी को घर में गुस्सा आता है और आपने इस वाटर को चार्ज कर दिया कि इसको पीने से माइंड शांत रहेगा, कूल रहेगा, तो आप देखिएगा घर में शांति आनी शुरू हो जाएगी, लोगों के माइंड में कामनेस आनी शुरू हो जाएगी। ये वाटर चार्जिंग का असर है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो, उन्होंने सबसे पहले वाटर चार्जिंग को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जब हम वाटर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, एक नॉर्मल वाटर, एक चार्ज्ड वाटर और डिफरेंट टाइप की इंटेंशन जो वाटर में डाली जाती है वो उसके क्रिस्टल में स्टोर हो जाती है, उसके एनर्जी फील्ड में स्टोर हो जाती है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। Thank you. ये जो जापानीज साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया जो वाटर मॉलिक्यूल होता है जब हम उन्हें डिफरेंट टाइप की इंटेंशंस देते हैं वो उसमें स्टोर हो जाती हैं और स्टोर होने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। फूड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर है क्योंकि हमारे शरीर का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा वाटर कंटेंट है और वाटर्स के द्वारा हम अपने बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस आ रही हैं, गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गई, इरिटेशन हो गया, तो हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है। अगर आप सुबह मेडिटेशन के दौरान अपनी एक वाटर बोतल को चार्ज कर लें और उसको इंटेंशन दे कि इसको पीने से मेरे जो चक्र हैं वो एक्टिव रहेंगे, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, तब आप उस वाटर को दिन भर यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करते हुए विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी एनर्जी तुरंत रिटर्न हो जाएगी। एक बॉटल चार्ज करने के बाद उससे 10 से 15 बॉटल 20 लीटर 30 लीटर वाटर चार्ज किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा चार्ज वाटर सब में डालेंगे तो सभी के सब चार्ज हो जाएंगे। चार्ज करने का तरीका कई प्रकार का है लेकिन मैं आपको साइकोनिरोबिक मेथड के द्वारा सिखाता हूं। तीसरा चीज है एयर चार्जिंग। एयर को चार्ज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एयर पॉल्यूटेड होती है। पॉल्यूशन के साथ साथ जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वर्क प्लेस में बैठे हुए हैं, वहां के एयर में डिफरेंट प्रकार के लोग अपनी वाइब्रेशन छोड़ के जाते हैं। इसे कहा जाता है एथरिक डेब्रिस। एथरिक बॉडी जो होती है उसमें से इंटेंशन नेगेटिव एनर्जी गिरते रहती है। जैसे कोई व्यक्ति धूल मिट्टी से सना हुआ आया, उसने ऐसे हल्का हल्का अपने कपड़ों को झाड़ा तो वो डेब्रिस वहां पे गिरेगी। ऐसे ही जो हमारी एथरिक बॉडी होती है, अगर वो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी में है तो वो वहां पर अपनी नेगेटिव इमोशंस छोड़कर जाता है। कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, किसी के कोई व्यक्ति आया बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का था, तो आप उसके साथ अनकंफर्टेबल तो फील करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके जाने के बाद आपको 10-15 मिनट आधा घंटा उस कमरे में नेगेटिव नेगेटिव सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा एक हॉल अच्छे से चल रहा था, एक सेमिनार चल रहा था, लोग हंसी मजाक का वातावरण था, लोग अच्छे से बैठ के बोलचाल कर रहे थे, एक व्यक्ति आया और इमीडिएट पूरे हॉल की एनर्जी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पे वाइब्रेट हो रहा था और उसने उस हॉल की एनर्जी को चेंज कर दिया। तो ऐसे में एयर को चार्ज करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपने ऑफिस की एयर को, अपने वर्क प्लेस की एयर को, अपने स्टडी रूम की एयर को चार्ज कर लेते हैं तो आप एक एनवायरमेंट अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। एयर को चार्ज करने के लिए ग्रीन कलर की एनर्जी की जरूरत होती है इस चक्र से, क्योंकि लव की फीलिंग के साथ। सेम ग्रीन कलर की प्लेट के द्वारा अपने माइंड की वाइब्रेशंस को हायर लेवल पर लेकर जाएं और एयर, दोनों हाथों से एयर को एनर्जी देना है, ग्रीन कलर की एनर्जी सेंड करना है और महसूस करना है कि आपके चारों तरफ की जो हवा है, एयर है, वो पूरा ग्रीन कलर की एनर्जी से भरपूर हो गई है और अब इसमें केवल पीस और लव है। यहां पर जो भी आएगा, जो भी बैठेगा इस हवा में, वो शांति महसूस करेगा, लव की फीलिंग महसूस करेगा। दूसरा यूज है एयर चार्जिंग का कि अगर आप दूसरों को हील करना चाहते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को या अननोन को, तो आप मेडिटेशन के बाद ग्रीन कलर की एनर्जी दोनों हाथों से, अपने हार्ट चक्र से और अपने हाथों के चक्रों से उस व्यक्ति तक ग्रीन कलर की एनर्जी के द्वारा सेंड करें। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मेथड एयर होता है, एयर और इथर एनर्जी को लेकर जाते हैं, तो एयर यहां से और इथर यहां से, स्काई ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे जो भी आपकी इंटेंशन है। आप एयर को और आकाश तत्व को चार्ज कर दें और जो भी आपकी इंटेंशन है वो दूसरे तक पहुंच जाएंगी। टेलीपैथी करना चाहते हैं, यहां से थॉट्स लेकर आइए और एयर और इथर तत्व में वो इंटेंशन को दे दीजिए, चार्ज कर दीजिए एयर को, वो एयर और इथर तत्व थॉट के द्वारा वहां तक चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है? एयर या इथर। जैसे अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ड्रॉपलेट ना पहुंच जाए इसीलिए मास्क लगा के रख रहे हैं, सेम टू सेम अगर आप अभी अपने एरिया में अपनी एयर को चार्ज करें ताकि आपका एरिया डिसइंफेक्टेड रहे, प्रॉपर स्टरलाइजेशन, प्रोटेक्शन तो करना ही है, उसके अलावा जो आप कर सकते हैं एयर चार्जिंग कर सकते हैं, फिर अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दें, वायलेट कलर का जो लाइट है उसके द्वारा अपने आउटर ऑरा को एक प्रोटेक्टिव लेयर में कन्वर्ट करें ताकि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज ना आए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने फिजिकल बॉडी को, फिजिकल चीजों को बिल्कुल लापरवाह कर दें। एथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, दोनों बॉडी को चार्ज करना है, दोनों बॉडी की रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन लेना है। दो लेयर की मास्क आप तीन लेयर क्यों लगाते हैं? सेम टू सेम जैसे मास्क दो लेयर तीन लेयर N95 लगा रहे हैं, ऐसे ही आप अपने फिजिकल बॉडी को भी प्रोटेक्शन दें सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन दें वायलेट कलर के द्वारा। अगर आप डबल लेयर प्रोटेक्शन रखेंगे तो आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे। फिलॉसफी है, साइंस है, जो आप मानना चाहें आपकी समझ के हिसाब, अपने बिलीफ के साथ करें जो भी करें। एक पावर पॉइंट की मदद से आपको मैं फिर दिखाना चाहूंगा चार्जिंग का तरीका। अभी तक जो हमने बातें की उसको मैं समराइज कर रहा हूं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखिएगा इस बात को, अलग अलग चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जो रूट चक्र है वहां की फ्रीक्वेंसी होती है 396। ऐसे बढ़ते हुए ये जो हार्ट चक्र है 639 और क्राउन चक्र 963, इन तीनों में एक चीज कॉमन है 396 6 3 9 9 6 3। इसे कहा जाता है निकोलस टेस्ला वेरिएशन ऑफ 3। ये 3 का मैजिकल नंबर होता है, ये फ्रीक्वेंसीज ऐसे रोटेट मूव होती हैं, ये मैजिक नंबर है 3। तो इन चक्रों को आप अलग अलग तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क की तरह है। इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करने के लिए हमें इस कलर की फ्रीक्वेंसी देनी होगी, इस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन यहां सेंड करनी होगी। आइदर आप आंखों के द्वारा करें यानी कि 3D विजुअलाइजेशन के द्वारा, या फिर आप साउंड के द्वारा इस फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुनाकर आप अपने इन चक्रों को एक्टिवेट करें। और भी कई तरीके हैं, फूड वाटर और एयर तीनों ही चीजें हमारी बैटरी के चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का एक मेथड होती हैं। ये देखिए झरने का पानी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जो हम पानी पीते हैं इसके वाइब्रेशन बहुत ही कम होती है। मैं जब PhD कर रहा था, अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर कृष्णा मधप्पा और डॉक्टर बीके चंद्रशेखर सर के साथ हमने कुल्लू मनाली में रिसर्च किया था, जिसमें एक नाली का पानी, झरने का पानी, घड़े का पानी, बोतल का पानी, चार प्रकार के सैंपल्स को लेकर, और पांचवा सैंपल था चार्ज पानी जो इंटेंशन के द्वारा चार्ज किया गया था। जो डॉक्टर कृष्णा मधप्पा थे उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने मेजर करके बताया अलग अलग एनर्जी अलग अलग वाटर की। तो जो झरने का पानी था सबसे ज्यादा चार्ज था, और सबसे कम वाइब्रेशंस जो थी वो बॉटल्ड वाटर की थी। नाली के पानी से भी कम वाइब्रेशंस थी बॉटल्ड वाटर में, क्योंकि नाली के पानी में फिर भी फ्लो होता है लेकिन बोतल के पानी में नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाली का पानी पी सकते हैं, उसमें इंफेक्शन है। कहने का मतलब यह है इन्फेक्शन पार्ट अलग चीज है, एनर्जी पार्ट अलग चीज है। हो सकता है कि बिस्लेरी का पानी, किसी भी बॉटल का पानी आप पिए, इन्फेक्शन नहीं है उसमें, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है, आपको एनर्जेटिक फील नहीं होगा। ये देखिए अनचार्ज मॉलिक्यूल वाटर का और चार्ज कैसा दिखाई देता है, क्रिस्टल बन जाते हैं। अलग अलग टाइप की एनर्जी देने से अलग अलग प्रकार का चेंज होता है। ये डॉक्टर इशिमोटो, जापानी साइंटिस्ट, उन्होंने पिक्चर्स लिए थे, YouTube पे आप जाके देख सकते हैं। तो सैक्रल वाटर तत्व ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है 474 ट्रिलियन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, इस कलर से, ऑरेंज कलर की 3D प्लेट से। अपने ब्रेन के, अपने माइंड की सेल्स को वाइब्रेट करवाना है, यहां पर हाई एनर्जी होगी, इसमें लो है, फिर ट्रांसफर करना है एनर्जी का इस वाटर के अंदर, और फिर चार्ज होने के बाद उसे इंटेंशन देनी है। इंटेंशन के बाद आप वाटर को दूसरे वाटर में मिक्स कर सकते हैं, जो इंटेंशन आपने दी वो 24 घंटे तक उसमें रहेंगी। कोशिश करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसे बचा के रखें, रेडिएशन से बचा के रखें वाटर को, ऐसी चीजों के पास ना रखें जहां से रेडिएशन निकल रही हो, मोबाइल, लैपटॉप, माइक्रोवेव, उस पानी को, चार्ज पानी को अपने साथ रखें, 24 घंटे सिप सिप करके पीते रहें बीच बीच में। 3 से 4 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए, चार्ज पानी पिएंगे और ज्यादा अच्छा होगा। और अच्छी बात, एल्कलाइन पानी पिएं। एल्कलाइन मतलब कैसे, कोई जरूरी नहीं है एल्कलाइजर लेने की, सिंपल तुलसी के पत्ते डाल दीजिए या रात को नींबू और खीरा, कुकम्बर एंड लेमन की स्लाइस अगर आप पानी में डाल के छोड़ देते हैं, निचोड़ना भी नहीं है, सिंपल डाल के छोड़ दें, सुबह उसका पीएच 7 से ऊपर हो जाएगा, और एल्कलाइन वाटर बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, 7 to 7.5 के बीच का वाटर बहुत अच्छा होता है। फूड, फूड की बात किया, ये देखिए जब हम कहीं से खरीद के लाते हैं, बहुत सारे लोगों की इंटेंशन उस फूड में होती है, फिर खाना बनाने वाले की इंटेंशन होती है, खाना परोसने वाले की इंटेंशन होती है, इसलिए तो कहते हैं कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना सबसे स्वादिष्ट खाना होता है, क्योंकि माँ जिस प्यार से बनाती है उतना प्यार से कोई नहीं बना सकता। और गुस्से में जब खाना बनाया जाता है तो आप सोच सकते हैं क्या होता है, इसीलिए खाना बनाने वाले को ध्यान दें, अगर गुस्सा आ रहा है तो खाना ना कुक करें, बेशक बाहर से मंगवा लें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के साथ खाना बनाना बहुत बेकार है। खाना खाते समय भी ध्यान दें कि सीरियल्स चल रहे हैं, गुस्से वाली चीजें चल रही हैं, वो ना देखें। पता चला खा तो बना तो इंटेंशन से दिया, खाते समय हम टीवी देख के खा रहे हैं और उस टीवी में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव न्यूज चल रही है, जो खाने के साथ साथ हमारे माइंड में इमोशंस भी जा रही हैं, वो डाइजेशन को भी गड़बड़ करेगा। कैसे चार्ज करना है, जैसे मैंने आपको बताया, फायर एलिमेंट सोलर प्लेक्सिस के साथ होता है, 3D विजुअलाइजेशन के द्वारा इस चक्र को देखना है, इस लाइट को, इस प्लेट को, माइंड और ब्रेन की सेल्स को वाइब्रेट करवाना है, ट्रांसफर करना है फूड में। 21 दिन आप कर लीजिए, फिर आपको प्लेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका माइंड जैसे ही आप सोचेंगे रिजोनेट होना शुरू हो जाएगा उस कलर की फ्रीक्वेंसी से। एयर चार्जिंग, नेगेटिव इमोशंस छोड़ के जाते हैं लोग, एयर एलिमेंट, हार्ट चक्रा, सेम प्रोसेस, इसीलिए कहा जाता है नेचर, नेचर के अंदर जो ग्रीनरी होती है उसमें 25% नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, इसीलिए जब आप नेचर में जाते हैं, ग्रीनरी में जाते हैं, आप चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास 25% नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, विजिबल इनपुट्स हम बॉडी में क्या क्या लेके जा रहे हैं, फूड, एयर और वाटर, ये तीनों चीजें पॉल्यूटेड हैं, अडल्ट्रेटेड हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में डिजीजेस पैदा हो रही हैं। करना क्या है, चॉइस क्या लेना है फूड में, ये ध्यान रखना है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बैड कंडक्टर, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार के फूड मैंने आपको बताए, 70% सात्विक, 30% राजसिक और मिनिमम तामसिक, हो सके तो ना ले। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड्स, उसके अलावा हाई शुगर कंटेंट फूड, उसके अलावा नॉन वेज, उसके अलावा जितना भी बेवकूफ बनाने का सामान चल रहा है, खुद समझें आप, हटाइए इसे। खासकर बच्चों को बताइए जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक जहर है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्रिक अल्सर, कोलोन के कैंसर, ये सब फूड की वजह से बन रहे हैं। चेक करके देखें अपने हार्ट चक्रा के साथ आपके लिए कंपेटिबल है कि नहीं है। एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, छोड़िए इन्हें। कब तक पकड़े रहेंगे, बर्बाद कर रहे हैं जीवन को। अगर हम लेते भी हैं, छोड़ें उन्हें और छोड़कर आने वाली पीढ़ियों को समझाएं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यह कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। नशा करना है तो मेडिटेशन का नशा करें। वो नशा ऐसा नशा है कि जिस दिन आप ये नशा कर लेंगे, मेडिटेशन का नशा, फिर किसी चीज में वो नशा नहीं है जितना मेडिटेशन में नशा है। समझदार बनने की जरूरत है, इंटेलिजेंट तो हम सब लोग हैं, वाइज बनने की जरूरत है। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, च्वाइस रखें, फिर फूड को चार्ज करें। खाना बनाते समय, परोसते समय, खाते समय अपने आप को कूल रखें, प्योर फीलिंग्स लेकर आए, चार्ज करके खाएं खाने को। एल्कलाइन फूड ज्यादा मात्रा में लें, एसिडिक फूड कोशिश करें कम से कम। अगला पार्ट वाटर। वाटर एल्कलाइन रहे तो अच्छी बात, एल्कलाइन नहीं भी है तो उसे चार्ज करें। सुबह मेडिटेशन के दौरान चार्ज कर लें, चार्ज करने के बाद दिन भर अपने साथ रखें। 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, एल्कलाइन पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा एल्कलाइन 7.5 का पीएच सफिशियंट रहता है। और उसके साथ साथ उसे चार्ज करके पिएंगे तो बॉडी दिन भर चार्ज रहेगी और स्ट्रांग रहेगा। एयर चार्जिंग ग्रीन कलर से दूसरों को भी सेंड कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस समय वैदिक समय में गोल्डन एज में लाइफस्टाइल का पार्ट होती थी। आज डाइट भी डिस्टर्ब्ड है, माइंड भी डिस्टर्ब है, लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब्ड है, एयर और वाटर पॉल्यूटेड है, अनहेल्दी डाइट है। यूं कहें हमने अपने आसपास बीमारी पैदा करने के सारी चीजें पाल के रखी हैं, हरी वरी और करी, केमिकल और रेडिएशन से भरपूर दुनिया में हम जी रहे हैं। नेगेटिव फीलिंग्स, कॉम्पिटिशन, फियर, इनसिक्योरिटी भरपूर मात्रा में है और हेल्दी रहने का एक भी तरीका हमने नहीं पाला है। फिर हम बोलते हैं सर बीमारियां इतनी क्यों बढ़ गई, हर आदमी को कैंसर क्यों हो रहा है। जब तक लाइफ को नहीं बदलेंगे, लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे, तब तक लाइफ नहीं बदलेगी। अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं शुरुआत करें लाइफस्टाइल से, और लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं तो अडॉप्ट करें गोल्डन एज का लाइफस्टाइल, जो आज मैंने आपको यहां पर समझाया। कल हमने बात की थी माइंड की, कि गोल्डन एज में माइंड कैसे एक्टिवेट होता था। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की थी। आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे गोल्डन एज का रास, रंग और नाद, यानी मुद्रा, कलर और नाद, साउंड फ्रीक्वेंसी। ये जो ओल्ड एज में, गोल्डन एज में होता था, उसको आज हम मॉडर्न वे में कैसे ला सकते हैं। पुरानी साइंसेस जितनी भी हैं, विज्ञान था वो, उस वाइन को, वाइन जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है। तो मैं कहता हूं वैदिक साइंस एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उस विज्ञान का नशा करना है। ये जो ओरिजिनल आजकल के नशे हैं उन्हें छोड़ना है, मेडिटेशन का नशा, चक्र विज्ञान का नशा, लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे आज के समय में भी हेल्दी रहा जा सकता है, ये मेरा विश्वास है। इतना कहकर मैं आज के सेशन को यहीं पर विराम देता हूं। कुछ देर आपके व्यूज जानना चाहूंगा आज के सेशन को लेकर।
गुड इवनिंग सर
जी।
हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी।
हाँ सर, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग एंड वंडरफुल था सर, बहुत ही शानदार। आपने फूड चार्जिंग, वाटर चार्जिंग और एयर चार्जिंग और अदर पर्सन को चार्ज करना बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा पावर है हमारे अंदर जो आपने हमें बताया। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि मैंने कुछ आपके पॉजिटिव हेल्थ जो ऑफलाइन आके मैंने सीखा चार्जिंग के, तो मैं कुछ लोगों को ये बात बताता हूँ चार्जिंग के बारे में। तो उसने एक क्वेश्चन किया था चार्जिंग के समय जो आपने बताया कि 21 पहले एंटी क्लॉकवाइज करते थे क्लॉकवाइज, उनका ये क्वेश्चन था कि पहले क्लॉकवाइज करे और बाद में एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या प्रॉब्लम आएगा?
देखिए, जब हम अपने आईज को या रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये जो चक्र होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकते हैं, और जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेकर आते हैं। तो दोनों तरीके का यूज किया जा सकता है, बट बेटर वे ये है कि पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज।
सर, जब हमारा माइंड हाई वाइब्रेशन में चला जाता है, जब हम वाटर में जब अपना फ्रिक्वेंसी को ट्रांसफर करते हैं तो वैसे ही करना है सर, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, या केवल केवल विजुलाइज करना उसको, देखना है ट्रांसफर करते
हैं? हाँ, तब आप मतलब जब आप प्लेट्स नहीं है तब आप येलो कलर का इमेजिन करें या ग्रीन कलर या जो भी आप जिस चीज से चार्ज करना चाह रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को यहां पर रखें और आईज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें 21 बार 21 बार क्लॉकवाइज। यानी जब आप आईज को रोटेट कर रहे हैं बंद आंखों में, तब भी आप विजुअलाइज करते रहें, क्योंकि उतने समय में आपकी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो उस फ्रीक्वेंसी पे आना शुरू हो जाएंगी। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन सबसे बड़ी पावर है जो ह्यूमन बीइंग के पास में है, शायद एनिमल्स के पास ये पावर नहीं है। ये हमारी थर्ड आई की पावर है, यही हमारी इंटेलेक्ट की पावर है।
सर, ये पानी को सर हम देखते हैं तो उस समय भी रोटेशन करना है क्या सर, जब आप ट्रांसफर करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को? तो क्योंकि मैंने जो बताया था कि 21 बार।
जी, बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
मैंने बताया सर, जो पर्सन को मैंने समझाया था कि आप पानी को जब देखते हैं अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, और आप वहां भी पानी के अंदर आप 21 बार एंटी क्लॉकवाइज और 21 बार क्लॉकवाइज करना है, तो ये प्रोसेस ठीक है सर, या उसने बोला कि केवल देखने से काम चल जाएगा क्या?
शुरुआत में जिसको भी नया सीखना है सबसे पहले उसे अपनी वो प्लेट्स लेनी है, 21 बार देखना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 3D दिखने के बाद, फिर यहां पर आंखें बंद करके उसका आफ्टर इमेज देखना है, फिर क्या करना है इमेजिन करना है, ये वाटर की बॉटल है, ढक्कन खुला हुआ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल हो तो और अच्छा है। इमेजिन करना है कि ये पूरी एनर्जी अब इस वाटर के अंदर ट्रांसफर हो रही है और ये वाटर ऑरेंज जूस बनते जा रहा है। जब आपको लगे कि हाँ ये ऑरेंज जूस बनते जा रहा है, मतलब आपका एनर्जी का ट्रांसफर, यहाँ एनर्जी ऑरेंज एनर्जी कम है यहाँ हाई है, अब ये जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे तब तक एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, तो वाटर बॉटल को अपनी आंखों के सामने लाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे रूट चक्र के साथ। तो कल का ड्रेस कोड रहेगा रेड कलर की ड्रेस, तो रेड कलर की ड्रेस के साथ कल फिर हाजिर होंगे सेम समय। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें।